بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا بھی موضوع ہے پاکستان کا سیاسی بحران. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے. جہاں ناظرین، پاکستان میں حکومت کے خلاف دھرنوں کو دو ہفتے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی. ہر آنے والے دن کے بارے میں پاکستان میں سیاسی پنڈت یہی کہتے ہیں کہ آج کا دن بہت ہی اہم ہے. اس درمیان حکومت نے عمران خان اور طاہر القادری سے براہ راست رابطوں کا فیصلہ کر لیا ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گورنر سندھ اور گورنر پنجاب عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں. طاہر القادری نے حکومت کو جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت سے مذاکرات آخری ہوں گے. پاکستانی میڈیا میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے مکمل ہونے تک وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں کے دھرنے اور مارچ اب تک کتنے کامیاب رہے، اور اگر شہباز شریف استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا طاہر القادری اپنا دھرنا ختم کر دیں گے، اور پھر عمران خان کی کیا حکمت عملی ہوگی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آج کسی وقت اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. حکومت نے ان کے پانچ یا سبھی مطالبات مان لیے ہیں ماں سوائے وزیر اعظم کے استعفے کے، جبکہ عمران خان کا سب سے اہم مطالبہ اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دیں. دوسری جانب پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم اور حکومت کی پشت پر کھڑی ہیں، اور صاف لفظوں میں ان جماعتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے. تو ایسے میں صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 15 روز سے جاری سیاسی بحران کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر پہلے ملاحظہ فرمائیے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ.
پاکستان میں سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے، اور عمران خان اور طاہر القادری کی جانب سے حکومت کو مزید سخت انتباہات دیے گئے ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا ایوان 20 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اور آئین پر یقین رکھنا جمہوریت کی فتح ہے. وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کے روز قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جمہوریت کو ہر حال میں قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ہم نے اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ہم ایسی چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں، مشکل وقت کو برداشت کر چکے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ اپنے حلف پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا. نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو روشن مستقبل دینے کے سفر پر گامزن ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کا سفر جاری رہے گا. وزیراعظم پر فوج کی جانب سے بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے وزیراعظم کو خبردار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جاری دھرنوں اور موجودہ سیاسی بحران کو جلد از جلد حل کریں. حکومت کے لیے ایک اور مشکل تب کھڑی ہو گئی جب 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے سانحے کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشنل کمیشن نے حکومت کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ پولیس نے حکومت کے احکامات پر کاروائی کی کہ جس کے باعث خون ریزی ہوئی. جوڈیشنل کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے پولیس کو دیے گئے بیانات میں تضاد موجود ہے، اور واقعے کے مقام پر ہونے والی سرگرمیاں بھی ان دعووں سے میل نہیں کھاتی. پنجاب حکومت کے ایک ترجمان نے جوڈیشنل ٹریبونل کی رپورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور یہ بے نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ رپورٹ دستاویزات، بیانات اور شواہد کی روشنی میں تیار کی گئی ہے کہ جسے رپورٹ کے ساتھ فراہم نہیں کیا گیا. ان دستاویزات کی فوری طور پر درخواست کی گئی ہے تاکہ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ضروری اقدامات کیے جا سکیں. تحقیقات کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد پاکستان عوامی تحریک کے رہنما طاہر القادری نے کہا ہے کہ شریف برادران کو اب صرف اقتدار سے ہٹانا کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں پھانسی دی جانی چاہیے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حالات جس انداز سے مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور حکومت شدید دباؤ میں ہے.
یا ناظرین، ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. چلتے ہیں سیدھے کراچی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار عرفان علی. السلام علیکم جناب. جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عرفان علی صاحب، کیا حقیقی معنوں میں حکومت کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آج رات یہ دھرنوں کا ڈراپ سین ہو جائے کسی بھی شکل میں؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر، کہ ایک جس کا تعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب حکومت کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو وہ اگر آپ جو ہے فیس ریڈنگ کر لیں، باڈی لینگویج دیکھیں گورنمنٹ کی، تو 13 اگست کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس مسئلے کا ایک سیاسی حل تھا، اور جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت نے دانش مندی کا مظاہرہ کر کے اس سیاسی حل کو ہی ترجیح دے رکھی ہے آج تک، اس وقت تک، اور ڈیڈ لائن دینے والے جو ہیں وہ اپنی ڈیڈ لائن بڑھاتے رہے ہیں. جو ڈاکٹر قادری صاحب تھے وہ جب پہنچے تھے وہاں دھرنا شروع ہو رہا تھا تب 48 گھنٹے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی، اور اب جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے جو 6 بجے ختم ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنا فیوچر کورس آف ایکشن بتائیں گے. تو لازمی بات ہے کہ جو ہے یہ حکومت کے خلاف ایک سنجیدہ احتجاج ہو رہا ہے، اور دو جو جماعتیں ہیں ان کی جو مطلب جو ہے انہوں نے جو اپنے حامیوں کو جو جمع کر رکھا ہے، اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کی حساسیت ہے، ریڈ زون میں ہے. تو گورنمنٹ لازمی بات ہے پریشان، فطری ایک بات ہے کہ وہ پریشان تھی اور ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے گورنمنٹ بھی جو ہے بہت لچک کا مظاہرہ کر چکی ہے، وہ اس کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے. ورنہ جو ہے وہ 13 اگست کو جو اس کی پوزیشن تھی کہ جو ہے ان سے سختی سے نمٹنے والی یا جو ہے ان کی کوئی بات نہ ماننے والی، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی بیک فٹ پہ چلتی چلی گئی، اور یہی لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ دھرنا دینے والے بھی دکھا رہے ہیں، ان کی قیادت بھی دکھا رہی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب ہے، اب وہ اس بات پر جو ہے آخری جو مطلب جو آئی تھی، ابھی تو بہرحال ان کے 5 جو راؤنڈ ہیں وہ ناکامی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات تو کہہ دی کہ مطلب بھلے 1 مہینے کے لیے ہی صحیح، لیکن پرائم منسٹر عہدہ چھوڑ دیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اس طرف سے لچک کا مظاہرہ. پھر یہ کہ سعد رفیق جو ہے وہ قادری صاحب سے ملنے آئے اور انہیں ان سے ان کو شرف ملاقات بخشا گیا، تو یہ جو چیز تھی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قادری صاحب بھی لچک دکھا رہے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے جو اتحادی ہے وہ ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں. تو ڈراپ سین کی جہاں تک بات ہے وہ بال جو ہے دونوں طرف کورٹ میں ہے، یعنی کہ آساب کی جو جنگ ہے اس میں کون پہلے ڈھیر ہوتا ہے. گورنمنٹ بہت حد تک جو ہے بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ باتیں مان چکی ہیں، اور جو ہے یہ حکومت کی جو برطرفی اور جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل اس معاملے پر جو ہے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور یہ بہرحال بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ سیاسی طور پر اور ہو نہیں سکے گا. اور یہ جو فزکس کا جو قانون حرکت میں ایک تھیوری ہوتی ہے F=ma، تو یہ جو ہے آؤٹ سائڈ یا ایکسٹرنل فورس جب آتی ہے تب جا کر جو ہے وہ جو معاملہ جہاں رکا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز رکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ حرکت میں آتی ہے. تو وہ ایکسٹرنل فورس آئے گی یا نہیں آئے گی یہ جو ہے چیز وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اور یہ جو سیاسی طور پر اگر اس مسئلے کا حل نکلنا ہوتا اس طریقے سے، یعنی کہ مسئلے کا حل تو سیاسی ہی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کروانے کی گارنٹی یا جو دوسری چیزیں ہیں وہ سیاسی قوتیں حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال درپیش ہے. تو ڈراپ سین کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو ہے لچک دونوں طرف ہے، اور ڈیڈ لائن بڑھ بھی سکتی ہے اور ڈیڈ لائن گھٹ بھی سکتی ہے، تو یہ انپریڈکٹیبل سچویشن ہے.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں برسلز بیلجیم، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے امور کے ماہر فیصل خان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی فیصل خان صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں فاروق ستار اور بھی بہت سارے لوگ، وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات یا آج کا دن بہت اہم ہو سکتا ہے کسی بھی تعلق سے، جو موجودہ بحران ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آنے والے گھنٹے، دن، یہ رات کیسی ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں پچھلے کئی بین الاقوامی چینلز پہ بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو صورتحال دیکھیے جو پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اور دیکھیے، یہ اب کوئی مطلب اس میں ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ہمارے تنظیم مبصرین اسلامی کے جو آبزرور وہاں گئے تھے اور ہم نے جب مانیٹر کیے تھے وہاں پہ الیکشن، تو ہم نے اس وقت بتا دیا تھا کہ وہاں پر پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اس کے برعکس جو مغربی ممالک تھے اور جو مغربی ممالک کے جو تجزیہ نگار یا تبصرہ نگار یا جو الیکشن مانیٹرنگ کے لیے جو لوگ گئے تھے، انہوں نے اس کو انتہائی شفاف قرار دیا بنیادی طور پر، کیونکہ وہ ایک ڈیسائیڈڈ ایشو تھا اور وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو لایا جائے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کو بنیادی لانے کے 3 مقصد تھے، جس میں پہلا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن، دوسرا یہاں پر یہ تھا کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کے خلاف آپریشن کرنا، اور تیسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فوج کی پوزیشن کو کمزور کرنا یا ڈی مورلائز کرنا، جس کا میں نے بین الاقوامی میڈیا پہ کہا ہے اور بار بار میں کہتا ہوں. میں اس کے ثبوت بھی میں अमेरिकन चैनल्स पे बल्कि कई चैनल्स पे दे चुका हूँ। बुनियादी तौर पर असल ये मामला था, इसलिए नवाज शरीफ को लाया गया। और आज जो ये कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं, देखिए मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली थी, हम स्टूडेंट तहरीक में उस तहरीक के हम हिस्सा भी थे तालिबे इल्मी के दौर में, वहाँ पे या कौमी इत्तेहाद की तहरीक में या एमआरडी की तहरीक में अगर आप ये देखें तो एक चीज़ ये थी कि जितने भी इत्तेहाद बनते थे वो हुकूमत के खिलाफ बनते थे, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला इत्तेहाद ऐसा बना है जो कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के खिलाफ है, क्योंकि ये इत्तेहाद बना है करप्शन के खिलाफ, ये शख्सियात के खिलाफ नहीं है। लोग इसको समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी इलेक्शन होते रहे अमूमन वो सब के सब धांधली में होते रहे, और ये इलेक्शन बहुत,
लेकिन फैसल खान साहब शायद ये भी पहली बार हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त एक साथ है।
एग्जैक्टली बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली मर्तबा हुआ है। बुनियादी तौर पर ये जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, ये असल में उस करप्ट निजाम को बचाना चाहते हैं जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तान 50-60 साल से चलता रहा है, क्योंकि अगर ये निजाम तब्दील हो जाता है तो इन लोगों की जो है जो हमेशा जो एक मोरसी सियासत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी डिमांड्स हैं एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर भी, और हमने इसको कहा है कि इनकी डिमांड जो है गलत नहीं है। देखिए पाकिस्तान में जब तक आप इंजीनियरिंग तरीके से और बड़े पैमाने पे आप तब्दीली नहीं लाएंगे, इंतजामी तब्दीली नहीं लाएंगे, सूबों की जब तक तश्ले नौ नहीं होगी, मामला को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ये मामला इसी तरह रहेगा। अब रह गई बात आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि फौज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त भी फौज जो है GHQ के अंदर पिंडी में एक अहम इजलास जारी है, और आखिरी इत्तला आने तक फौज ने फिर भी नवाज शरीफ को ये पैगाम भेजा था कि आप कोशिश ये करें कि मामला को सुलह सफाई से निपटाएं। लेकिन देखिए बार बार हुकूमत जो है बुनियादी तौर पर जब एक बात तय हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, तो मेरी ये बात समझ में नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा क्यों नहीं देते। अगर नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें तो कयामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये तो सबको पता है, अब तो सारी दुनिया कह रही है कि ये इलेक्शन जाली थे। अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देकर अगर बहरान को बचा सकते हैं तो बचा लें, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो ला महाला अगर कोई मसला हुआ तो मैं समझता हूँ कि फौज फिर इस सूरत हाल के अंदर मजबूर होगी कि अपना कोई किरदार अदा करे, जिसके के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद है नाजिम अली साहब, सीनियर तजनिगार। अस्सलाम वालेकुम जनाब नाजिम अली साहब।
वालेकुम सलाम सर।
नाजिम अली साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहजा फरमाई, क्या इस्तीफा ही मौजूदा बहरान का हल है?
जी जो फैसल खान साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। मसला ये है कि अगर आप इसको देखें ग्लोबल विजन के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो काफ़ी देर से पाकिस्तान को एक कमज़ोर एक करप्ट कंट्री को टॉलरेट नहीं बल्कि इंकरेज किया गया है। ये जो इमदाद का जो होता है मसला, अमेरिका देता रहता है इमदाद, क्यों दे रहा है, किसी वजह से दे रहा है, क्विड प्रो क्वो होता है इसमें कि आप कुछ देंगे हम कुछ लेंगे। तो ये जितने भी आ चुके हैं अब तक हुक्मरान, वो इसीलिए आए हैं कि उनको ये चीज़ें पंजाबी कहते हैं माफक हैं, उनको ये हजम होती हैं ये बातें कि भाई हम कुछ करेंगे इनके लिए, ये कुछ हमें देंगे। नवाज शरीफ साहब ने 5 साल सब्र किया जरदारी के दौर में, अब वो आए हैं, अब वो तजारत करने के लिए आए हैं, वो हुक्मरानियत करने के थोड़ी आए हैं, तो वो चाहते हैं जितने भी कुछ हम कमा सकते हैं 5 साल में हम कमा लें, तो वो अपनी कुर्सी के पीछे हैं। तो देयर इज नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर, कोई उनको दिलचस्पी नहीं है कि मुल्क का क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो जो आप देखते हैं इमरान खान साहब और तारिक कादरी साहब ने जो किया है, इसको थोड़ा सा आगे भी देखना चाहिए ग्लोबल विजन के साथ, कि तारिक कादरी साहब ने कहा ये इनकलाब है, तो इनकलाब अगर उनकी जो ऑडियंस देखें वो गरीब अवाम है, उनके अवाम जो बस सच्चे पाकिस्तानी लोग हैं, वो कहीं भाग नहीं सकते, कहीं वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं वो सड़कों में बैठे हैं, वो पति 3-4 हफ्तों से अपने घरों से निकले हुए हैं, बारिशों में बैठे हैं, भीग रहे हैं, वो बेचारों का क्या हाल है।
नाजिम अली साहब, ये अवाम है या कारकुन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
मेरा ख्याल में तो अवाम है सर, कारकुन देखो औरतें इतनी हैं, बच्चे हैं, बच्चे क्या कारकुन है, अवाम ही है जो अपने बच्चे को इतनी बारिशों में कौन उनको तनख्वाहें मिल रही है उनको वहां बैठने के लिए। इमरान खान साहब का मुझे पता नहीं, ज्यादातर वो घर रात को तो उनको बैठने की जरूरत नहीं होती, वो घरों को चल जाते हैं, उनके पास वो मीन्स फैसिलिटीज हैं। मगर तारिक कादरी साहब का अगर आप देखें तो उनका तो ये है कि वो बारिश हो रही है वो बैठे हैं, धूप शदीद धूप है वो बैठे हैं बेचारे।
आपने अभी एक जुमला कहा कि नवाज शरीफ साहब तजारत करने के लिए आए हैं और क्या कहते हैं हुकूमत करने के लिए नहीं आए हैं, तो जाहिर है कि आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया, क्या आवाम को ये नहीं मालूम था?
मैंडेट कैसे दिया, जब रैली इतनी हो गई सब मान रहे हैं, ये हुआ है वो है, इलेक्शन कमीशन पूरा डिस्क्रेडिटेड हो गया, उनकी बातें मानेंगी? देखो अवाम की जो सच आवाज़ वो कभी जाहिर नहीं हुई पाकिस्तान में, इट्स अनफॉर्चुनेट। तो अब आप देखें क्या हो रहा है कि जो जैसे फैजल खान साहब ने कहा ये करप्शन के खिलाफ एक सिलसिला चल रहा है, इसको इंकरेज करना चाहिए। इतनी करप्शन है पाकिस्तान में, इतनी करप्शन है, यहाँ से 5 साल तक अगर आप शुरू करें, कादरी साहब आ जाएं, इमरान खान साहब आ जाएं, वो इट्स नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, वो बहुत टाइम लगेगा इसको। मगर जब तक ये स्टेटस को रहेगा, जब तक ये क्या कहते हैं या शरीफ बरादरान आ रही हैं या भुट्टो बरादरान आ रही हैं, आपस में तकसीम कर दिए इन्होंने मुल्कों में, बस यही दो खानदान है पूरे मुल्क में, कोई और नहीं है, कोई बाहर से नहीं आ सकता, कोई यानी कोई फ्रॉम अ डिफरेंट पोलिटिकल थिंकिंग, जरूरी है यही ये भुट्टो आएंगे या शरीफ आएंगे, क्या है ये मुल्क को बेच रहे हैं और क्या है, आपस में तकसीम किया हुआ है, आपस में मिले हैं, अब देखो अब अपोजिशन सब इकट्ठे हो गए हैं, देयर स्टेटस को इज बीइंग थ्रेटन्ड, अब वो डर रहे हैं कि भाई ये तो ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए।
जी मसला मैं ये फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नाजिम अली साहब। इरफान अली साहब, इतलात ये हैं कि गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और डॉक्टर ताहिरुल कादरी से उनकी बातचीत हो रही है, क्या मुमकिन फार्मूला लेके गए होंगे आपके ख्याल में?
देखिए, इस पे कोई कयास आरा ही करना जो है वो सही नहीं होगा कि वो क्या मुमकिन फार्मूला लेकर गए होंगे। जो बातें वो खुद कहते रहे हैं वो ये है कि मतलब जो के जो है वो दोनों तरफ की विन विन सिचुएशन चाहते हैं, यानी कि फेस सेविंग होगी कि आपकी भी इज्जत बचे, हुक्मरानों की भी इज्जत बचे, यही एक उनका फार्मूला हो सकता है कि मतलब जो है कुछ बातें वो अपनी उनकी मानेंगे और वो कुछ उनकी मानेंगे। इसके अलावा तो मतलब जो है बर्फ पिघल ही नहीं सकती, और ये मुमकिन ही नहीं है कि मतलब जो है फितरी बात है कि जो है वो कुछ बातें जो है मनवाएंगे और कुछ बातें मानेंगे, ये शुरू से एक ही फार्मूला है। फिर जो है इमरान खान ने बीच की राह सुझाई है कि वो 30 दिन वाली बात करें, और एक जो जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दें, तो मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पे जो है वो भैंस जो गाय की कुर्बानी भी नहीं हो रही और जो है बकरी की भी नहीं हो रही, बकरे की भी नहीं हो रही। अब वो जो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो मुर्गा कुर्बान करने के चक्कर में है, यानी कि पुलिस वालों को लटकाने के चक्कर में कि सारे मॉडल टाउन में वो फंसाए, और जो है ये जो बड़ी जो कुर्बानियां हैं दो, यानी कि जो है शहबाज शरीफ साहब या जो है नवाज शरीफ साहब या दोनों, ये नहीं हो रही। तो मुमकिन फार्मूला जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो बता चुके हैं, इन सबका जो टिल्ट है अल्ताफ हुसैन साहब हो या आसिफ जरदारी साहब हो, ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि कादरी साहब या इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं इलेक्शन के हवाले से, जो उनका मौकफ है या सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो उनकी डिमांड्स है वो जायज है, वो कोई इलेजिटिमेट नहीं है, नाजायज कोई मुतालबा उनका नहीं है। और जुडिशियल कमीशन की ने जो मतलब जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं उसको जो है लोग मान नहीं रहे कि ये फाइंडिंग है, जो भी आप उसको रिपोर्ट ही कह लें उसमें तजाद जो है, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया था और जो है कल एक न्यूज चैनल ने वो पूरी ब्रेक भी की है, और जो उसके जिम्मेदारान थे वो उसको जो है नहीं दे सके, उसका कोई तशफी बख्श या तसली बख्श कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो ये बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब या जो है राणा सनाउल्ला साहब, इन दो पर ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जो है इस लेवल के किसी ऑफिशियल हायर जो अथॉरिटी है उसके बगैर ऐसी कोई चीज पुलिस खुद से कर दे। मुर्तजा भुट्टो जो है वो कत्ल हुए थे बेनिट भुट्टो के दौर में, उनके भाई थे, सितंबर 1996 में। उसके बाद जो है हमारे एक नामवर जज थे नासिर असलम जायद, उनकी सरबराही में जो है उसका जो है ट्राइब्यूनल बना था, इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बना था, उसने भी जो है उसमें जो है मैंने उसकी फाइंडिंग्स जो है कवर की थी, उसकी हियरिंग्स कवर की थी, तो उसने भी ये कहा था कि हायर अथॉरिटी ने जो है आर्डर किया था, जबकि मैं खुद जो उसकी जो जो हियरिंग्स थी उसके अंदर मौजूद था, और वहां जो डिपोजिशंस थी उसके अंदर ये पता चला था के इंटीरियर मिनिस्टर ने आर्डर किया था पुलिस को, हायर अथॉरिटीज को, के मुर्तजा के साथ जो गार्ड्स हैं उनको डिसार्म किया जाए। ये उस दौर की बात थी, यानी कि उन्होंने मुर्तजा के खिलाफ नहीं कहा था लेकिन मुर्तजा के गार्ड्स के खिलाफ कहा था। तो ऐसी चीजें होती हैं, फिर जो है वो इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनते हैं, वहां पे ये चीजें होती है। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट अपना जमा कराया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना स्टेटमेंट जमा कराया है, जिसमें कंट्राडिक्शन आपको नजर आ रही है, वो कहते हैं कि मैंने कहा था और वो कहते हैं कि नहीं मुझे कहा ही नहीं था। तो ये जो चीजें ये खुद जो है हुकूमत की पोजीशन को कमजोर और मशकूक कर रही है। तो सानिया मॉडल टाउन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए एक जो है टर्निंग पॉइंट है, और जो है इसकी रोशनी में, भले दीगर डिमांड्स ना भी मानी जाए ना मनवा सके, लेकिन अगर साने मॉडल टाउन ही अगर सही तरीके से जो है जुडिशरी अगर इसको डील कर लेगी तो शायद इसी के नतीजे में जो है हुकूमत के खिलाफ एक्शन मुमकिन हो सकेगा।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँ अपने मेहमानों की खिदमत में, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आप सबको और अपने मेहमानों को। फैसल ख़ान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सानहे मॉडल टाउन की मुकम्मल तहकीकात तक मुमकिन है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें, यानी उस वक्त तक वज़ीर आला ना रहें। क्या ऐसी खबरें अगर सच हैं और ऐसा हो जाता है तो ये बहरान ख़त्म हो जाएगा?
देखिए जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये खबर मेरे पास तकरीबन 1 घंटे पहले मुझे तस्दीक हो गई थी, बल्कि मुझे इसका एक कादरी साहब के एक तवस्सु से और उनके मार्फत से मेरे पास वो उनका स्केड्यूल भी पूरा आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। और दूसरा ये कि एमकेएम का जो अभी आपने पूछा था कि जो लोग अभी लेकर गए थे वो ये लेकर गए हैं प्रोपोजल उनके पास कि वो अगर कादरी साहब मान जाते हैं तो ये है कि वो 50 सीटों पर 8-9 जो है गिनती करवा देंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि नैब का सरबराह उनकी अपनी मर्जी का होगा, नंबर दो। नंबर तीन, FIA का सरबराह जो है वो भी ताहिरुल कादरी और इमरान खान की मर्जी का होगा। ये तीन अभी प्रपोजल लेके गए थे जिसके बारे में आपने मेरे एक दोस्त से सवाल किया था, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जो आप कहें कि इस्तीफे की, देखिए इस्तीफा अगर दे भी दें तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफा देने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मामला जो है ये टोटली इलेक्शन जो है, देखिए पूरा इलेक्शन जो है ये मैं समझता हूँ कि रिग हुआ है और ये कलदम हुआ है। और देखिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत का है। ये मामला अगर चाहे, अगर आज नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें तो ये मामला हल हो सकता है, नवाज शरीफ के बगैर इस्तीफे के ये नहीं होगा। देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तमाम जो तनाजुर में है इसको सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल के अंदर ना देखें, इसको बल्कि बैन अवी तनाजुर में भी देखें। आपको याद होगा कि आप ही के चैनल के ऊपर, ARY के ऊपर भी मैं बार बार ये कह चुका था जनवरी के अंदर कि 2014 के अंदर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान से निकल रही हैं और आपको पता है कि ईरान हो गया है, मस्जिद वुस्ता है, ये अब चीन के लिए एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। पाकिस्तान ये कॉरिडोर को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो जाए कि चीन का और मशीक वस्ता का तेल जो है किसी तरीके से चाइना तक ना पहुंचे। इसी पस मंजर के अंदर ये सारा मामला खड़ा किया गया और ये बात हुकूमत को पता है, गवर्नमेंट जानती है, नवाज शरीफ की हुकूमत को पता है। इसके बावजूद जो है, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हालिया दिनों में ये जो चीन अभी गए हैं शहबाज शरीफ साहब और जो अभी ये जो जरदारी साहब चाइना गए हैं, वो चाइना जाने का भी मकसद यही है, क्योंकि कल रात मेरी चाइनीज डिप्लोमेट से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को समझाने के लिए कि आप बैन अवी मामला और बैन अवी इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी को समझें और कोशिश करें कि आप इस्तीफा देकर इस मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले का सिर्फ एक ही हल है कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें। और मैं ये भी आपको बताते चलूं कि ये इस बात की भी जमानतें दी जा चुकी हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देते हैं तो उनको मुख्तदर हल्के और बैन अवी ताकतें जिनमें तुर्की और चीन शामिल है, नवाज शरीफ को एक महफूज कॉरिडोर देने के लिए भी तैयार है।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। इस वक्त गलबन टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर रफीक रजवाना साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी शुक्रिया। रजवाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुखालिफ जमातें हैं यानी हुकूमत की और जो धरने पर और बहुत से दीगर कुछ अनासिर या हलके या अफराद या सियासतदान ये कह रहे हैं, या मुबसिन जैसा कि अभी आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी, कि बहरान का हल ये है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला दोनों इस्तीफ़ा दे दें, तो क्या आपकी जमात इस सिलसिले में कोई गौर कर सकती है?
मैं मेहमानों की गुफ्तगू नहीं सुन सकता, लाइन पे देर से आया। गुजारिश ये है कि इस्तीफे का जो मुतालबा है, ठीक है, हालात बड़े गंभीर हुए हुए हैं, बड़े दूरियत है, अगर ये रवश चल पड़ी कि आप कुछ जमातें या एक जमात, एक सियासी जमात है, दूसरी मजहबी जमात है, उनका मॉडल तो उनके जो कतल हुए हैं उस पर उनका मौकफ अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ये जाती हुई है और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, तो जब ये ऐसी सूरत हाल है तो क्या ये एक प्रेसिडेंट हम बुला लें, एक हम ये रिवाज डाल लें कि जब भी मजमा कर जाए तो उसके बाद एक मुंतख वजीर आजम जिसको पार्लियामेंट ने मुंतखब किया और उस वजीर आजम के इलेक्शन में PTI इमरान खान साहब की जमात का भी उम्मीदवार था, उस पार्लियामेंट का जनाब इमरान खान साहब और उसकी जमात के मौजूद मेम्बर पार्लियामेंट का हिस्सा है, भले उन्होंने इस्तीफे जमा करा दिए स्पीकर साहब से, तो ये कोई अच्छी रिवाज नहीं होगी। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा چاہتا ہوں کہ باقی استعفے کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں ان میں سے جو قابل عمل ہیں ہم تو حاصل ہیں. آپ کی ذمہ دار صاحب کے کنٹینر میں جناب مشان لال صاحب گئے, وہ یہ گفتگو کر لیں اسی قتل قتل کے حوالے سے جو قتل بانگستان میں ہوئے ہیں, اس بہار کے امراض کی بات بھی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو رویہ ہے وہ غیر آئینی بھی ہے غیر جمہوری بھی ہے, مگر اس وقت میں نرم گفتگو پہ انحصار کروں گا کیونکہ بہت سی آگ بڑھتی ہوئی ہے اور اس کو چھلنے کرنے کی خواہشیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ان شاء اللہ بہتری ہوگی اور جناب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر رہی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر اسے تحریف اور رواج نہ دی گئی تو یہ مسئلے کا کوئی فوری طور پہ ظاہری طور پہ تو لگے گا یہ حل ہے, مگر اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے. جو خاص طور پہ جب جتنی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے, تمام جماعتوں نے متفق کا تقاضا قومی اسمبلی میں پیش کی ہے, منظور ہوئی ہے, ہم نے سینٹ میں ہمارے آئی ہے, ہم نے منظور کی ہے, تمام جماعتوں نے متفق کا طور پر کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کے اعتماد سے لوگوں نے اللہ نے نوازا اور اعتماد سے لوگوں نے نوازا. اب وہ جماعتیں اس بات پر متفق ہیں بھلے ہمارے اختلافات ہوں گے سیاسی کے, یہ استعفے کی بات بھی غلط ہے.
جی رجوانہ صاحب جی بہت شکریہ, آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے, ہمارے ساتھ ہی کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں اور آواز کی کیفیت کسی حد تک بہتر ہو سکے, آپ اگر ہم کو دوبارہ رابطہ دے سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. عرفان علی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کراچی کا دورہ کیا, تو یہ ان کا معمول کا دورہ تھا یا ہلکے کچھ اور کسی اور انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جو یہاں پر جو میں اپنے دوستوں کی بات سن رہا ہوں وہ مفروضوں والی بات ہے, تو مفروضوں پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اپنی خواہشات کو مطلب جو ہے وہ تجزیہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہوں کہ مطلب نواز شریف چلے جائے نہیں جائے, مطلب جو اگر ہے, ہم لوگ اپنی رپورٹنگ جب بھی کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوتھ سیئرز یہ کہتے ہیں یا تھیوری میکرز یہ کہتے ہیں, ہم لوگ اپنے اوپر اس چیز کو نہیں لیتے تھے کہ مطلب ان کو جاننا چاہیے نہیں. تو جیسے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے ڈسکس ہو چکی ہے کہ نواز شریف نے جو ہے جنرل صاحب سے کہا ہے کہ چار جنرل میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ان کے استعفے لیں, تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شاید کراچی کے بھی ہیں جن کی تعیناتی کراچی میں. ایسی چیز جو ہے میڈیا میں ایک تجزیہ نگار نے جو ہے کلیم کیا ہے, تو اس روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو شاید جو ہے آپ کی بات میں مطلب جو جس طرف آپ سمجھ رہے ہیں تو اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ مطلب جو ہے کوئی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, انفر بھی کر سکتا ہے کہ شاید اس سلسلے میں ہو اور یہ چیز ڈسکس ہوئی ہو. تو مطلب یہ جو چیز لوگ کہہ رہے ہیں تکے بھی چل رہے ہیں اور تھیوریز بھی چل رہی ہیں یہ سب چیزیں اسی طریقے سے. دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب کا میسج کلیئر ہے کہ جلد بامقصد طور پر سیاسی طور پر اس مطلب بامقصد مذاکرات کے ذریعے سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے, تو یقیناً کوئی ڈیڈ لائن بھی ہوگی کہ یہ جلد کتنا جلد ہے. تو اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ دیکھیں کہ مطلب جو ہے جو دمادم مست کلندر جو ہے اس کا جو اشارہ جو یہ جو ہے ہماری سیاسی اصطلاح میں یہی ہے کہ پھر جو ہے میک اور بریک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں اپنی طرف سے نہیں کہنی چاہیے کہ یوں ہوا یا وہ ہوا, چائنیز جو گورنمنٹ ہے اس نے اسی نواز شریف گورنمنٹ کے ساتھ پلیج کیے ہیں ایگریمنٹ, اور چائنیز جو گورنمنٹ ہے اس کے ریلیشن شپ ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ہے, ہماری نیشن کے ساتھ ہے. گورنمنٹ کا جو چینج ہونا ہے اس سے اس پر فرق نہیں پڑتا ہے. وہ پرویز مشرف صاحب کو بہت چاہتے تھے اور 2011 میں ڈینیل مارکی جو ہے ان کے جو تھنک ٹینک ہیں اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں ان کی کتاب بھی ہے جو 2014 میں یہاں پر انڈین ایڈیشن ہے اور 2013 کے آخر میں جو ہے آئی تھی اور کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو امریکن آفیشلز کے ساتھ وہ 2011 میں گئے تھے چائنا, تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ امریکی آفیشلز کو کہا تھا چائنیز آفیشلز نے کہ جو ہے آپ نے مشرف گورنمنٹ کو ہٹا کے اچھا نہیں کیا, اور پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ چائنیز گورنمنٹ نے جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ معاملات بالکل ایز یوزول نارمل رکھے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ مشرف صاحب کے جانے سے چائنا جو ہے وہ زرداری کو مطلب جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کر لے گا یا زرداری کے جانے کے بعد نواز شریف کو ہٹانے کے لیے آ جائے گا. یہ لوگ جاتے ہیں ڈپلومیسی میں, یہ چیزیں ہیں टर्किश जो रोल है उसको भी डिनाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन टर्किश रोल जो है वो नवाज शरीफ उसका उसकी एडवाइस कबूल करते हैं, ना कि टर्की जो है वो दूसरों को एडवाइस करता है। जरदारी साहब टर्की के टर्किश प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल को लाए थे ताकि जो है अपने खिलाफ अपोजिशन को कम करें, ये भी हुआ है। तो मतलब टर्किश रोल जो है वो ज्यादा है, चाइनीज जो है इस किस्म का कोई रोल रहा ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि उन्हें इस बात से दिलचस्पी हो कि ये आ रहा है या वो आ रहा है। तो जो जनरल राहत शरीफ साहब का जो है पैगाम है, फौज का जो पैगाम है, और ये जो चार जनरल के इस्तीफे वाली बात है, तो और उनके रिटायरमेंट शायद जो है या उनकी जो मतलब जो सर्विस की मुद्दत जो खत्म हो रही है वो इसी साल हो रही है, तो ये जो चीज है इसको अहमियत दी जा सकती है। लेकिन थ्यूरीज, लेकिन हाइपोथेसिस या क्लेम वाला जो गेम है कि मतलब जो है जो लोग फैलाते हैं उसके हिसाब से कोई कंक्रीट बात जो है नहीं है। हमने अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में ये चीजें बहुत देखी हैं, यानी कि आप जो है इस जो धरने को ही देख लें कि वो इमरान खान साहब रोज कह रहे हैं कि आज आजादी का जश्न मनाऊंगा, कल मनाऊंगा, क्या मना लिया? तो ये जो है ये क्लेम होते हैं, ये लोगों को मुतमइन करने के जो है टूल्स होते हैं, तो इस पे इतना सीरियस कंसिडरेशन नहीं लेना चाहिए। ये 48 घंटे पहले भी थे, 16 अगस्त को भी और आज भी है। अब आप खुद देख लेंगे कि ये चलते हैं या रुकते हैं, क्या होता है। ये मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक सिचुएशन अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, और जितनी भी ऑफर्स है वो पहले दी जा चुकी है और ये मीडिया में आ चुकी है। एमक्यूएम ने क्या किया है, गवर्नर पंजाब ने क्या किया, सब कुछ आ चुका है, इसलिए मैंने उसको रिपीट ही नहीं किया है कि टाइम जाया करूं।
बहुत शुक्रिया आपका। नाजिम अली साहब लंदन स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि इमरान खान लाए अमल का ऐलान करने वाले थे आज, ऐलान जब तक मैं आया था तो मैंने तो नहीं कहीं सुना पड़ा था, तो किस तरह का लाए अमल हो सकता है आपके ख्याल में?
सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हैं
जी? जी नाजिम अली साहब,
हाँ जी हाँ, इमरान खान साहब ने कहा था जो सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते हैं they want to do it on different levels. के वो कह रहे हैं कि टैक्स ना दो, ये ना दो, वो ना दो, बिजली का बिल ना दो, ये ना करो। एक जो मेरे नज़र में एक गलती जो उन्होंने की है कि ये जो टाइम लिमिट्स देते रहे कि 24 घंटे में ये होगा, 48 आवर्स में ये होगा, 48 घंटे में ये होगा, ये नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उसमें खुद पर पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि जब कुछ हो नहीं रहा तो लोग भी सोचेंगे भाई ये कि तो बस क्या हो रहा है, बस गेम शेम हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे मेरे भाई ने कहा है, दोस्तों ने कहा है कि ओपिनियंस तो होंगे, वो तो जाहिर है, हर किसी का ओपिनियन होता है, जैसे एक्सपीरियंस है वैसे ओपिनियन है, मगर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए एंड सम थिंग्स आर एक्चुअल फैक्ट कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में अमरीका का हाथ ज़रूर होता है, होता रहेगा और इट्स विदाउट डाउट। और जब तक अमरीका नवाज शरीफ को कुछ नहीं कहते हैं तो तब तक वो तो कुछ नहीं करने वाला, वो तो बैठा रहेगा, क्योंकि वहाँ से उसको ज़्यादातर सपोर्ट जो मिलती है, सब कुछ जो मिल रहा है वहाँ से ही मिल रहा है। और अमेरिका का उसने, अमेरिका ने पिछले 30 साल में जितना पाकिस्तान में कुछ किया हुआ है, गन डाला हुआ है और अपनी दहशतगर्दी का क्या कहते हैं एग्जिबिशन दिया हुआ है, वो हटने वाला नहीं है। तो ये जो इनकलाब करना चाह रहे हैं, ये जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यानक के साथ सोचना होगा कि अमेरिका के साथ ये जंग कर रहे हैं या सिर्फ नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि जितने भी एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, खासकर ऑन अ फॉरेन लेवल बेसिस, ये सब अमेरिका के साथ हैं और जैसे वो चाहते हैं वैसे ही होता है। जाहिर है जैसे अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान ने शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो गया था बहुत आराम के साथ मुशरफ के दौर में। ये वही मुशरफ है बाय द वे जिसने अमेरिका में जाके एपेक के साथ बात की थी कि कुछ थोड़ा सा आप भी गिव एंड टेक करें, हम भी कुछ करते हैं इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए। तो ये जितने भी हुक्मरान आ चुके हैं सब इनके कोई ऐसे नहीं है कि जिसको हम कह सकें भाई शाबाश। और सूरत हाल अब ये है कि अगर नवाज शरीफ इस्तीफा दे भी दे कल आज जो भी, तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है? क्योंकि तारिक कादरी के एम्स जो हैं दे आर डिफरेंट टू इमरान खान एम्स। ठीक है करप्शन दोनों कहते हैं मुकम्मल यानी खत्म करना, खात्मा होना चाहिए, लेकिन उनके जो वेज ऑफ डूइंग इट आर दे आर डिफरेंट। इमरान खान को हमेशा ये कहता रहता है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, और कादरी साहब जो हैं वो तो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट लुक्स, मगर बेसिक पॉइंट्स ये जो फैक्ट हैं, और फैक्ट ये है कि अमेरिका का हाथ है इसमें, अमेरिका की सपोर्ट है इसमें रूलिंग क्लासेस को, उनको पता है अल्ताफ हुसैन कौन, उनको पता है नवाज शरीफ फैमिली कौन है, भुट्टो फैमिली कौन है, सब जानते हैं एक दूसरों को ये। they're very close with each other.
बहुत शुक्रिया आपका,
ये
बहुत शुक्रिया
जी, ये जो चीज
जी, बहुत शुक्रिया फैसल खान साहब। आज जिस तरह से नवाज शरीफ का बयान आया, जो उनको उनका लबो लहजा था, जिस तरह से उनके लबो लहजे में एतमाद पाया जा रहा था, उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि मैंने हलफ उठाया और अपने वादे से कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की पासदारी करूँगा। और ज़ाहिर है कि उनके साथ अपोजिशन, वकला बरादरी, ताजर बरादरी सब है बज़ाहिर।
देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, नवाज शरीफ का ये बयान आया है, जैसे अभी नाजिम साहब ने कहा है लंदन से, मैं उनकी बात को बिल्कुल उनको सेकंड करूंगा कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, इनके पीछे अमेरिका खड़ा है। मैंने जब से पहले भी कहा था कि इसमें पाकिस्तान को की, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक मतलब डिप्लोमेटिक मीडिएटर भी हूँ और बैन अवी मामला में अमूमन मेरी मीडिएशन होती है, अमेरिकन, रशियन और चाइनीज थिंक टैंक के साथ मैं हमेशा अटैच होता हूँ, तो ज़ाहिर जो बात मैं अमूमन करता हूँ वो अमूमन हकीकत की बुनियाद पर होती है, तजिया मेरा बहुत कम होता है। लेकिन जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब की पीठ थोकी गई है और नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप स्टैंड करें। लेकिन देखिए, लेकिन ये भी कोई बात तो नहीं है ना कि अगर वो अगर खड़े रहेंगे, अगर वो इस्तीफा नहीं देते मिसाल के तौर पे, तो ये तो फिर वो अपने माजी को दोहरा रहे हैं। नवाज शरीफ का माजी आप सबको पता है, जब वो सूबाई हुकूमत में थे तो मरकज से लड़ते रहे, बेनजीर के साथ लड़ के सारी जिंदगी उनकी गुजर रही, जब वो मरकज में आए तो उन्होंने फौज के साथ लड़ना शुरू कर दिया, अब वो आए हैं तो उन लोगों आवाम के साथ लड़ना शुरू कर दिया जो करप्शन के खिलाफ है, जो इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं, अब वो उनके साथ लड़ने के लिए शुरू हो गए। तो ये लड़ाई तो नवाज शरीफ का माजी है, तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। नवाज शरीफ के साथ जो लोग हैं और जो मतलब फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो नवाज शरीफ को, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनके कुछ मामलात हैं और उस मामलात के अंदर उनको वो आगे चाहते हैं कि वो प्रोलॉन्ग करें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं नहीं समझता कि फौज जो है इस वक्त इस मामले को ज्यादा तूल दे। अगर ये मामला ज्यादा बिगड़ा तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि फौज जो है बीच में दरमियान में आ जाएगी, लेकिन ये वो माशाल्लाह कसम का नहीं होगा। हो सकता है कि फौज इनसे इस्तीफा ले ले और इस्तीफा लेने के बाद फिर कोई दूसरा मामला जो है उसको जमहूरी तरीके से इसको चलाने की कोशिश की जाए।
जी फैसल खान साहब, अभी आपने कहा कि जिस ज़माने में वज़ीर आला थे उस ज़माने में उन्होंने महाज़ाराई की, जब वफाक में आ गए तो उन्होंने फ़लां से महाज़ाराई की, तो ये सारी बातें तो पीपल्स पार्टी वाले भी जानते होंगे, एएनपी वाले भी जानते होंगे, महमूद खान अलचकज़ई भी जानते होंगे, वकला बरादरी भी जानती है, ताजिर बरादरी भी जानती है, तो फिर क्यों सब इनके साथ खड़े हैं?
देखिए मैंने बताया ना, उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह कि करप्शन है, वो सिस्टम है। देखिए नवाज शरीफ साहब का आपको पता है कि सारा पैसा दुनिया में, सारा जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त कितने बड़े कारोबारी ग्रुप इस वक्त चला रहे हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि मुझसे भी मेडिएशन हुई थी थोड़े दिन पहले एक अफगानिस्तान के एक थिंक टैंक के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने ये बैक चैनल के अंदर बातचीत की मोदी के साथ कि वहाँ पर हिंदुस्तान में जितने ठेके हैं वो हिंदुस्तान को दिए जाएंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, वहाँ से जितना स्क्रैप होगा पाकिस्तान अमेरिकन फौज के जाने के बाद वो शरीफ ग्रुप लेगा। तो इस किस्म की बातें जो है ये सो सारा करप्शन है। जरदारी साहब का भी आपको पता है इल्ला माशाल्लाह क्या कुछ रहा है। तो पाकिस्तान की दोनों जमातें जो हैं, नवाज शरीफ साहब हो गए या पीपल्स पार्टी हो गए या अब जिनका आपने नाम लिया है अचकज़ई साहब, अचकज़ई साहब के अभी आधे रिश्तेदार जो हैं आप उठा के देख लें वो इससे फायदा उठा रहे हैं। अचकज़ई साहब को सिर्फ एक नॉमिनेट किया गया था एक नुमाइंदे के तौर पर, उन्होंने बराह रास्त जाकर हामिद करजई के साथ उन्होंने डीलिंग की, जबकि उस शख्स ने पाकिस्तान से वफादारी का हलफ भी नहीं उठाया था। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें जो है ये सब करप्शन के जिम्मे में आती
है। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान साहब, वक्त रहा तो फिर हाजिर होंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शैला रजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।
वालेकुम अस्सलाम
जी मोहतरमा शैला रजा साहब, बदकिस्मती से काफ़ी देर में हमारा रब्ता हुआ, हमारे पास सिर्फ 3-3.5 मिनट का वक्त है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त आपकी जमात हुकूमत का और वज़ीर आज़म का साथ दे रही है, तो जो आपके नाक़िदीन वो कह रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है, तो आया आप किस उसूल की बुनियाद पर हुकूमत का साथ दे रही हैं और क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का?
मुझे नहीं मालूम कि जिन्होंने इल्जाम लगाया है वो एमको की किस दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में 11 जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान साहब सियासी तन्हाई का शिकार होकर एक तरफ है। और इसके अलावा ये है कि इन सबको ये सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट में कसरत राय से, क्योंकि इमरान खान की पार्टी थी नहीं यूनानिमस थी, बल्कि कहना चाहिए के वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। और हर एक का ये कहना है कि पाकिस्तान में आइन की, जमहूरियत की, पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रहना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी पूरी पॉलिटिकल लाइफ है इस स्ट्रगल से भरी हुई है, जिसमें हमारे दोनों रहनुमाओं की जान की कुर्बानी तक है और लोगों की कमर में 86,480 करोड़ों के निशान भी हैं, भुट्टो साहब के अलावा 17 लोगों की फांसी भी है, कि हम एक सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं चाहे उसके लिए हमारी जान भी चली जाए, तो अगर कोई ताकत इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश करे में हम उनका भी साथ देंगे।
जी तो मौजूदा सूरत हाल आप किस तरफ जाती हुई देख रही हैं?
देखिए सूरत हाल के सीरियस है, इसलिए कि एक तरफ है मुरीदैन जिनसे उनका पीर जो है वो हलफ होता है और उसके बाद ब्लैक सूट गाड़ी में खड़ा होकर अंदर आके और औरतों को चारों तरफ लगा देता है, वो तो मुरीदैन है, जैसे होगा वो करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने बच्चे की तरह चांद चाहिए खड़े हुए हैं, लेकिन सब देख रहे हैं कि एक मखसूस खिलाफ मखसूस दरबार में आकर दिन भर धरना जो है वो बिल्कुल एक उजड़ी हुई जगह का मंजर पेश करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शैला रजा साहबा, और इसी तरह हम नाजिम अली साहब, फैसल खान साहब और इरफान अली साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने प्रोग्राम के आखिर तक हमारा साथ दिया। नाजिम, हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपने हमारे मोज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई। एक तरफ लोगों का यह ख्याल है कि जो धरने हैं उनके मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं, और दूसरी तरफ शैला रजा साहब जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका कहना है कि ऐवान में 11 जमातें हुकूमत और वज़ीर आज़म के साथ हैं, और अगर इस तरह इस्तीफ़ा लेने का सिलसिला शुरू हो गया तो ये रवायत इंतहाई गलत होगी। और जैसा कि इस्वंदियार वली साहब ने भी कहा कि इस तरह से इस्तीफ़े लेने की अगर रवायत पड़ गई तो यह निज़ाम के लिए ख़तरा हो सकता है। बहरहाल ये अपने अपने ख्यालात और अपने अपने नज़रियात हैं, देखना यह है कि आने वाला वक्त, आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते किस तरफ जाते हैं और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस शक्ल में मारज़ वजूद में आता है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।